जय धवला पुस्तक 10 लेक्चर नंबर 13
ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहोरं वेदगवेदगवेदगम् अवेदगं वेदगं तमं सिद्धं सिद्धं प्रणमीय शिरसा त्वोच्चावे महाहियारमहम्।
यह श्री वीरसेन आचार्य की जय धवला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चोनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा इति शुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की। 10वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 80 पर आ गए, 80। अभी हमारा प्रकृति स्थान उदीर्णा में अंतिम 17वां अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है अल्प बहुत्व। उसमें हमने देखा है कि एक प्रकृति के प्रवेशक जीव सबसे कम है, उनसे दो प्रकृतियों के प्रवेशक जीव संख्यात गुणे, क्योंकि उसका काल भी संख्यात गुणा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर उनसे चार प्रकृतियों के प्रवेशक जीव संख्यात गुणे, क्योंकि चार प्रकृतियों के तो छठे सातवें वाले भी हो सकते हैं, वे संख्यात गुणे हैं। उसका कारण भी बताया था कि भय जुगुप्सा के उदय से रहित उपशम समय दृष्टि क्षायिक समय दृष्टि प्रमत्त अप्रमत्त जीवों के भी ये चार वाला स्थान हो सकता है। उसके बाद बताया था कि पांच प्रकृतियों के प्रवेशक जीव असंख्यात गुणे हैं, असंख्यात गुणे क्योंकि तिरियंचों में भी ये पाया जाता है, पांच वाला स्थान पंचम गुण स्थान वर्ती के। तो कहते हैं क्योंकि उपशम समय दृष्टि और क्षायिक समय दृष्टि संहिता से, क्षायिक समय दृष्टि संहिता से तो मनुष्य राशि है, उपशम समय दृष्टि तो मनुष्यों में भी हो गई और तिरंचों में भी हो गई, तो असंख्यात होता है। उसके संख्यात बहुभाग प्रमाण जीव राशि का यहाँ प्रधान भाव से अवलंबन लिया है, उसमें भी संख्यात बहुभाग क्यों कहे प्रतिवत है, केवल पांचवें गुणस्थान वाले औपशमिक कहते तो ठीक ना, उसमें संख्यात बहुभाग क्यों कहा। हाँ दोनों है, किसका संख्यात बहुभाग, जितने पांचवें गुणस्थान वर्ती टोटल उपशम समय दृष्टि क्षायिक समय दृष्टि है उनका संख्यात बहुभाग ऐसा क्यों कहा, आप कहेंगे होने दो ना, उसमें से संख्यात बहुभाग क्यों लिया, ये मेरा प्रश्न है। बोलो अश्विन भाई।
नहीं उपशम का काल के पिता बताती है,
इसमें से उपशम क्षायिक वालों के कौन कौन से हो गए, 7, 6 और 5 तीनों हो गए।
हाँ।
इनमें से पांच वाले संख्या दो भाग वाले, ये बात बताना क्या नहीं बताना। देखो भय जुगुप्सा से रहित वाले हैं पांच वाले, भय या जुगुप्सा सहित हो तो 6 वाले हो गए, दोनों से सहित हो तो 7 वाले हो गए। तो जो पांचवे गुणस्थान वाले औपशमिक अक्षायिक है उनमें से बहुभाग प्रमाण जीवों के 5 वाला स्थान है, और 6 वाला और 7 वाले वो तो संख्यात भाग प्रमाण है, जैसे उन्हें मिथ्यात्व में देखा था। मिथ्या दृष्टि के 10, 9, 8 वाले 3 स्थान होते हैं, उसमें से 8 वाले जीव संख्या बहुभाग प्रमाण होते हैं और 9 और 10 वाले संख्या भाग प्रमाण, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना। लिखा ना संख्यात बहुभाग प्रमाण, तो संख्यात बहुभाग प्रमाण कहने का ही प्रयोजन है कि दोनों से रहित वाले जीव ज्यादा है, संख्यात बहुभाग प्रमाण। ये जरा आवाज गूंज रहा है। यानी हमने ये देखा पांच वाला स्थान, यानी सात छः पांच में से पांच वाले जीव संख्या दो भाग, ये बात ख्याल में आई। छः और सात वाले ऑप्शन वाले ही है, छः और सात वाला भी स्थान होगा उनके, और वो तो संख्या से भाग प्रमाण होते हैं। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा था, अब आगे पढ़ेंगे। छन्नम परिणम पवेशगा असंख्यज गुणा, उनसे छह प्रकृतियों के प्रवेशक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि वेदक सम्य दृष्टि संयता संयत जीवों के संख्यात बहुभाग के साथ। अब देखिए वेदक सम्य दृष्टि संयता संयतों के स्थान कौन कौन से हो गए, छह सात आठ, तो आठ सात छः को उसमें से
बहुभाग,
छः वाले बहुभाग हैं ब्रजगुप्साती रहे, उनके साथ उपशम सम्य दृष्टि और क्षायिक सम्य दृष्टि असंयत जीवराशि। अब यहाँ उसके साथ वो क्षायिक सम्य दृष्टि चौथे वाले लेने, और वो तो चारों गतियों में पाए जाएंगे। भले मनुष्य संख्या तैयार होते परंतु वो तो मरकर अन्यत्र चले जाते हैं, तो क्षायिक के भी संख्यात भूभाग में चौथे गुणस्थान वाले के कौन से हो गए, नौ आठ सात, उसमें से भी सात वाले संख्यात भूभाग वाले हो गए।
यहाँ छह की बात चल
रही, सॉरी छह की बात चल रही है, उसमें सात आठ सात छह वाले हो गए, चौथे गुणस्थान वालों के आठ सात छह वाले हो गए। वेदक समय दृष्टि संयता संयत भी आठ सात छः, और उपशम समय दृष्टि असंयत जीव भी आठ सात छः, उसमें से छः वाले बहुभाग वाले हों। जो मिनिमम वाला भय दिवक्ता रहित वाला स्थान है वो बहुभाग वाले होते हैं, उनकी यहाँ प्रधानता देखी जाती है। और यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि भय और जुगुप्सा के अनुदय के काल के महात्म्य का, महात्म्य ने लंबा काल किया, दोनों का ही जहाँ उदय नहीं है वो काल बड़ा है, तो काल का महात्म्य, महात्म्य ने लंबे पड़ा काल में वो अधिक है काल, उसका अवलंबन लेने से यह सिद्ध स्वरूप है, यानी ये बात घटित होती है। अब छः की बात देखिए, हमने पांचों से छः वाले असंख्यात गुणे। अब कहते हैं सत्तन्नम परिणम पवेशगा असंख्यज गुणा, उनसे सात प्रकृतियों के प्रवेशक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि क्षायिक सम्य दृष्टियों के संख्यात्वे भाग के साथ। एक क्षायिक सम्य दृष्टि में तो छः वाले सात वाले जो है संख्यात्वे भाग है, क्षायिक समय दृष्टियों के तीन स्थान कौन से, आठ सात और छः, क्षायिक समय दृष्टियों के लिए छः वाले संख्यात बहुभाग है, सात और आठ वाले संख्यात वे भाग प्रमाण है, परंतु वेदक समय दृष्टि चौथे गुणस्थान वालों के नौ आठ और सात वाले स्थान हो गए, तो उनमें सात वाले संख्यात बहुभाग वाले। इसलिए कहते हैं यहाँ पर क्षायिक समय दृष्टियों के संख्यात्वे भाग के साथ, वे तो संख्यात्वे प्रमाण है ही है, क्षायिक समय दृष्टि या औपशमिक समय दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले, उनके तो ये संख्यात्वे भाग प्रमाण है सात का स्थान, क्योंकि छः वाले संख्यात बहुभाग थे। उसके साथ साथ वेदक समय दृष्टि असंयत राशि, उनके स्थान नौ आठ सात है, उसमें से सात वाले संख्यात बहुभाग होंगे। ख्याल में आती है ना बात, जहाँ जहाँ भय जुगुप्सा रहित वाले स्थान है वे संख्या बहुभाग समान। पांच में भी ऐसा देखा, छह में भी ऐसा देखा, तो उनकी यहाँ प्रधानता देखी जाती है। अब आगे कहते हैं दसन्नम पयड़ीनम पवेशगा अनंत गुणा। कितने गुणा का? अनंत गुणा, क्योंकि अभी मिथ्या दृष्टि, ये दस वाला स्थान मात्र मिथ्या दृष्टि के लिए, और मिथ्या दृष्टि तो अनंत जीव राशि।
यहाँ पे भैजू गुप्ता के साथ वाला भी, अच्छा
ये
वो
सात वाला, क्योंकि अल्प बहुत है संख्या गुणा वाला, हम आगे देखेंगे। आठ दस नौ आठ में से आठ वाले स्थान मैक्सिमम हो गए,
दस नौ आठ में से अच्छा आठ वाले स्थान
भैजू गुप्ता रहित वाले स्थान अधिक होते हैं। तो कहते हैं उनसे दस प्रकृतियों के प्रवेशक जीव अनंत गुणे हैं, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि राशि के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। संख्यात्वा क्यों? क्योंकि उनके मिथ्या दृष्टि के दस नौ आठ का स्थान है, आठ वाले संख्या बहुभाग हो गए, दस और नौ संख्यात्वे भाग प्रमाण हो गए। उनसे नौ प्रकृतियों के प्रवेशक जीव संख्यात गुणे हैं, ये दोनों भी संख्यात्वे भाग है, फिर भी दस से नौ वाले संख्यात गुणे हो गए, क्योंकि उसमें यहाँ तो दोनों का एट ए टाइम उदय होना चाहिए, वहाँ एक के बाद एक का लेना है, भय के और जुगुप्सा के, कोई भय वाले कोई जुगुप्सा वाले, तो उनके ऐसे भी देखेंगे तो दो गुना तो सिद्ध हो गए ही हो गए, तो संख्यात गुणे हैं। ऊपर पढ़े ना, नवन्नम परिणम पवेशगा संख्यज गुणा, उनसे नौ प्रकृतियों के प्रवेशक जीव संख्यात गुणे हैं, क्योंकि भय और जुगुप्सा इन दोनों के मिले हुए उदय काल से अन्यतर विरहित काल संख्यात गुणा है, ऐसा उपदेश है।
अब भय और जुगुप्सा का जो उदय काल है वो छोटा है, बहुत छोटा है। ये विदाउट वाला संख्यात गुणा लिया तो भय और जुगुप्सा का जो उदय काल है वो बहुत छोटा है, ऐसे ले सकते हैं।
फिर भी यहाँ उसकी बात यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ एक एक का उदय लेना, और पहले दोनों का एक साथ उदय लिया, दस वाला है दोनों का एक साथ उदय है, उसकी अपेक्षा ये सेपरेट सेपरेट उदय काल मिलाएंगे हम तो वो बड़ा हो जाएगा काल। ये जो भय जुगुप्सा रहित वाला काल बड़ा है वो तो बाद में, वो आठ के बारे में लागू होगा, यहाँ पर नहीं लागू होगा। अठन्नम पैडीनम पवेशगा संख्यज गुणा, उनसे आठ प्रकृतियों के प्रवेशक जीव संख्यात गुणे हैं, क्योंकि अन्यतर विरहित काल से, दोनों के ही उदय से रहित काल, अन्यतर विरहित काल का क्या अर्थ है? एक से रहित, यानी एक से सहित, ऊपर शब्द आया था ना, यहाँ क्या लिखा था? भय और जुगुप्सा इन दोनों के मिले हुए उदय काल से, यानी जहाँ दोनों का उदय है उस काल से, यानी दस वाले स्थान से, अन्यतर विरहित काल, यानी किसी एक से रहित, परंतु एक से सहित है ना वो। अब यहाँ कहते हैं अन्यतर विरहित काल से, यानी एक का उदय वाले काल से, दोनों के ही उदय से रहित काल संख्यात गुणा है, ऐसा अवलंबन किया गया है। और यह असिद्ध नहीं है, क्योंकि इसी सूत्र से वह सिद्ध स्वरूप, इस सूत्र से ही वो बात सिद्ध होती है कि वो काल संख्यात गुणा है। इस प्रकार ओघ से अल्पभूतवानगम समाप्त हुआ। अब आदेश का कथन करने के लिए आगे का प्रबंध कहते हैं। देखो हमने एक से शुरू किया था, एक वाले सबसे अल्प थे, दो वाले संख्यात गुणा, चार वाले उनसे संख्यात गुणा, पांच वाले असंख्यात गुणा, क्योंकि पांच वाला वो तो पांचवे गुणस्थान वालों के होते हैं। फिर छह वाले उनसे भी असंख्यात गुणा, क्योंकि यहाँ तो चौथे गुणस्थान को भी हम इंक्लूड कर सकते थे, वेदक संहिता संयत और चौथे गुणस्थान की असंयत राशि, शायिक और औपचमिक वाले। फिर सात उनसे भी असंख्यात गुणा, क्योंकि वैदिक समय दृष्टि असंयत आ गई। वैदिक समय दृष्टियों की संख्या साइकों की संख्या से असंख्यात गुणा, वो यहाँ पर आ गई। फिर दस प्रकृति, दस नौ आठ तीन रह गए,
अनंत हो गए,
तो उसको तो अनंत गुणा किया। दस वे से नौ वाले हैं वो संख्या गुणा, और नौ वालों से आठ वाले वो उससे भी संख्या। इस तरह से अल्पवोत्व ओग में घटित है। ज्यादा देखो एट ए टाइम दोनों का उदय होगा, उस काल से संख्या
गुणाकार एक ही का उदय काल,
एक ही नहीं दोनों का मिलकर, क्योंकि कभी भय का है और कभी जुगुप्सा का है, तब दोनों का मिलकर होगा।
या दस से नौ
या एट ए टाइम भी ले लेगी, क्योंकि कोई जीव भय वाला कर रहा है कोई जुगुप्सा वाले है। काल उतना ही लेंगे तो जीव डबल।
अच्छा,
हो जाएगी
दोनों
ना?
की अपेक्षा,
दोनों की अपेक्षा लेंगे, कोई भय वाले जीव है और कोई जुगुप्सा
वाले, एक एक की होते हैं।
और उसका काल भी उन्होंने बड़ा बनाया, अन्यतर से विरहित काल बड़ा है। अब कहते हैं दोनों से रहित वाला काल वो से भी बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा काल है? जहाँ दोनों का ही उदय नहीं है, ऐसा काल बड़ा है। संख्यात गुणा संख्यात गुणा। अब ये ओग की प्ररूपना यहाँ समाप्त हो। अब आदेश का कथन करने के लिए आगे का प्रबंध कहते हैं। निरय गदीय सवत्थोवा छन्नम पैरिणम पवेशदा। क्योंकि नर्क में तो कौन कौन से स्थान है?
छह सात आठ नौ
दस से छह तक, तो छह प्रकृतियों के प्रवेशक जीव सबसे स्थोक है। और छह वाले कौन हो गए?
सही क्या
औक्षमिक और क्षय, क्योंकि पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण उपशम समय दृष्टि और क्षायिक समय दृष्टि जीवों का यहाँ पर ग्रहण किया है।
या उपशम समय दृष्टि भी पल्ले के असंख्यात विभाग में, औली के असंख्यात विभाग में ना,
पल्ले के असंख्यात विभाग
सब मिल,
क्योंकि हमने काल में वालों की संख्या पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है। आप उपक्रमण काल देख रहे हैं, उसकी बात नहीं है, टोटल जीवन की संख्या की बात है, और वो भी मैक्सिमम संख्या की बात है, क्योंकि ये सांतर मार्गणा है। हो सकता है कभी एक ही जीव हो। यहाँ उत्कृष्ट संख्या कितनी होती है एट ए टाइम? पल्ले का असंख्या तो होगा।
हमने काल की अपेक्षा कैसे देखा था? औली का असंख्या का बात है, तो अंतर्मुख
तो एक जीव अंतर्मूर्त तक रहेगा कि नहीं उपशम समय से?
अच्छा, वहाँ संचय होगा।
संचय होगा नहीं होगा, और क्षायिक समय दृष्टि में क्या कहेंगे हम? वो भी सागरों तक वहाँ सभी चारों गति में पड़े, उनकी संख्या कितनी है? पल्ले का असंख्यात अभाव हमने देखे थे, वो सबके लिए पल्ले का असंख्यात अभाव। पांचवे वाले कितने हैं? पल्ले के असंख्यात अभाव, फिर भी उससे वो संख्यात गुणे हैं, या कैसे चौथे वाले संख्यात गुणे होंगे? संख्यात गुणे के असंख्यात गुणे होंगे। यहाँ तो अभी हमने पांच वालों से छह वाले असंख्यात गुणे देखे, चौथे वाले उनसे भी असंख्यात गुणा, फिर भी उनको क्या कहेंगे? पल्ले का असंख्यात। अब नर गति में सभी से अल्प जो है छह वाले हैं। अब कहते हैं सत्तन्नम परिणम पवेसवा पवेसगा असंख्य जगुणा। उनसे सात प्रकृतियों के प्रवेशक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि वेदक समय दृष्टि जीव राशि प्रधान भाव से यहाँ पर विवक्षित है। सात वालों में वेदक है ज्यादा। दसन्नम पैडिनम पवेशगा असंख्य जगुना। उनसे दस प्रकृतियों के प्रवेशक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि नारकी असंख्यात है, इसलिए ये मिथ्या दृष्टि वाले भी उनसे असंख्यात गुणे होंगे। क्योंकि भय और जुगुप्सा के उदय वाली मिथ्या दृष्टि जीव राशि यहाँ पर विवक्षित है। अब उनसे भी नौ वाले ज्यादा और आठ वाले ज्यादा कहें, जैसे हमने पहले ओग में देखा। देखो ये नरक मार्गणा चल रही है, पहले वाले में अनंत गुणा कहाँ पर लिया? दस वाले, क्यों? अनंत को एक इंद्रिय पूरी राशि लेना है, संख्या गुणा है। हाँ, दस नौ आठ तीनों ही स्थान मिथ्या दृष्टि के है। मिथ्या दृष्टि ज्यादा भी है इसलिए वहां तो असंख्यात गुना कह दिया। तो 10, 9 और 8 तीनों स्थान मिथ्या दृष्टि के हैं, परंतु उनमें से ज्यादा कौन से है? 10 वालों से 9 ज्यादा है, 9 वालों से 8 ज्यादा है, क्यों? 8 वाले जो है वो भय जुगुप्सा से रहित है।
नहीं, उनका कहना क्या है कि सम्यक दृष्टि में भी 8 का स्थान है,
होने दो ना। उनसे तो मिथ्या दृष्टि है ही ज्यादा।
हाँ, ज्यादा
9 8 7 वाला स्थान तो सम्यक दृष्टि के भी है, परंतु वे अल्प है, उनसे मिथ्या दृष्टि ज्यादा है। तो 8 में तो दोनों के मिलाकर कहेंगे हम, परंतु दोनों के मिलाकर भी मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुणा है तो वहां तो वो घटित होता है। फिर भी जो असंख्यात गुणा 10 वाले को पहले नंबर पर रखा, फिर 9 वाले को और फिर 8 वाले।
आठ वाला मिथ्या दृष्टि, दूसरा तीसरा और चौथा गुण स्थान मिलकर जो संख्या होगी वो अनंत गुणा से आगे तो ज्यादा ही होगी, बराबर है?
यहाँ तो नारकियों में तो अनंत गुणा का
नहीं, नारकियों में नहीं, वो उसकी अपेक्षा,
उसकी अपेक्षा तो अनंत जहाँ ले ली हमने आठ में, आठ वाले कितने तो अनंत है। अब उसमें थोड़े से मिला तो दूसरे तीसरे चौथे वाले उसमें कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है,
एक का
किसी को भय है, किसी को जुगुप्सा है। हाँ,
एक का भी
नहीं, दोनों ही नहीं। हाँ,
उनकी संख्या अधिक है,
मैक्सिमम है सर्वत्र। हमने इसे देखा जब पांच की पांच प्रकृति की बात थी तो हमने औक्षमिक समय दृष्टि, क्षायिक समय दृष्टि लिए पांचवे वाले मनुष्य और तीन दोनों मिलकर, क्योंकि उसमें भय जुगुप्सा से रही वाला, उसमें भी पांच छह सात तीन स्थान थे पांचवे वाले को, उनमें से पांच वाले ज्यादा थे। जहाँ जो मिनिमम वाली संख्या है वो मैक्सिमम, यानी भय और जुगुप्सा रहित जो गति होती है उनकी संख्या संख्यात बहुभाग है, और बाकी जो दो बची हुए स्थान है वो संख्यात्वे भाग के मान। मिथ्यात्व में भी ऐसा ही लेना है, 10 9 8 तीन स्थान है, उसमें 10 सबसे कम, 9 उनसे संख्यात गुणा और 8 उनसे संख्यात गुणा। ओग में अनंत में
है, ओग में अनंत है,
तीनों अनंत है,
नौ आठ नौ
तीनों अनंत है। पहले वाले अनंत से दूसरा संख्यात गुणा हुआ है ना, वो भी संख्यात अनंत होगी ना, उसके और आठ वाला और संख्यात गुणा है, उनका प्रमाण कितना तो अनंत है, वो तो हम पहले देख चुके हैं प्रमाण अनुगम में। अभी हमने पढ़ा कि उनसे नौ प्रकृतियों के प्रवेशक जीव संख्यात गुणे हैं। अब 82 पृष्ठ पर आए, आप कहते हैं नरक में भय ज्यादा होगा उसके लिए मार्गणा की अपेक्षा कोई खास फर्क नहीं बताया, सर्वत्र भय जुगुप्सा की बात, उदय रूप की बात है। देखो यहाँ कारण बता रहे हैं, नौ का संख्यात गुणा है क्योंकि दोनों के उदय काल से, यानी जिस जीव को भय और जुगुप्सा दोनों का उदय है उसका जो काल है उससे संख्यात गुणे भय और जुगुप्सा में से किसी एक के उदय से रहित काल में, एक के उदय का रहित है यानी एक से सहित है, और दोनों का मिला, किसी का भय का उदय है किसी के जुगुप्सा का है, उक्त जीवों का संचय हुआ है, वो काल बड़ा है इसलिए वहां जीवों का संचय ज्यादा है। अट्ठन्नम पैडिनम पवेसगा संख्यात गुणा, उनसे आठ प्रकृतियों के प्रवेशक जीव संख्यात गुणे हैं क्योंकि अन्यतर के उदय से रहित, अन्यतर का उदय की रहित है या भय का उदय है या जुगुप्सा का, एक का ही उदय अन्यतर का नहीं है, तो अन्यतर के उदय से रहित काल से दोनों के उदय से रहित संख्यात गुणे काल में, यानी जहाँ भय और जुगुप्सा दोनों का ही उदय नहीं है वो काल संख्यात गुणा है। जहाँ किसी एक का उदय है उस काल से, जहाँ दोनों का भी उदय नहीं है वह काल ही संख्यात गुणा है, तो उतने काल में संचित हुए जीवों का प्रमाण भी संख्यात गुणा होगा, उक्त जीवों का संचय हुआ है। इस प्रकार सामान्य से नारकियों में अल्पभूत समाप्त हुआ। इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में जानना चाहिए। सहस्रार वहां तक ही नित्य दृष्टि असंख्यात गुणे हो गए, इसलिए वहां तक के लिए। तिर्यंचों में पांच प्रकृतियों के उदीरक जीव सबसे स्तोक है, क्योंकि तिर्यंचों की रेंज 5 से 10 तक है। उनसे 6 प्रकृतियों के उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि 6 वाले वो चौथे गुणस्थान वाले के भी हो सकते हैं। उनसे 7 प्रकृतियों के उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि 7 वाला जो दोनों से रहित वाला जो है वैदिक समय दृष्टि के होता है, तो वो असंख्यात गुणे। उनसे 10 प्रकृतियों के उदीरक जीव अनंत गुण है, तिर्यंच इसलिए अनंत गुण का। उनसे 9 प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात गुण है, वो अनंतों से संख्यात गुण है, और सबसे ज्यादा 8 वाले हो। उनसे 8 प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात गुण है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए। तो जब हम पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक कहेंगे तो अनंत गुणे हो गया कि नहीं होगा?
नहीं
हो सकता। पंचेंद्रिय तिर्यंच तो असंख्यात ही होते हैं, तो उसमें असंख्यात गुणा कहेंगे। किंतु इतनी विशेषता है, इनमें 10 प्रकृतियों के उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त को में, अब इसमें 10, 9 और 8 तीन ही स्थान है। 10 प्रकृतियों के उदीरक जीव सबसे स्तोक है, उनसे 9 प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात गुणे हैं, और उनसे 8 प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात गुणे हैं। अब मनुष्यों में, यानी सामान्य मनुष्यों में पहले लगा रहे हैं, 1 प्रकृति के उदीरक जीव सबसे स्तोक है, जैसे हमने ओघ में देखा है। उनसे 2 प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात गुणे हैं, संख्यता हुए हैं, संख्यात तो करना। नीचे से 7वीं लाइन संख्यात तो गुणे। उनसे 4 प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात गुणे, क्योंकि 4 वाले तो छठे सातवें समय दृष्टि। हाँ, उनसे 5 प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात गुणे हैं। ये मनुष्यों में देख रहे हैं ना हम,
4।
और उनसे 6 प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात गुणे हैं, मात्र मनुष्यों में। ओघ में तो हम 5 वाला स्थान में असंख्यात गुणे कहा था, यहाँ मनुष्यों की बात है तो यहाँ पर संख्यात गुणे हो गए। उनसे 7 प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात गुणे हैं। अब उनसे 10 प्रकृतियों के उदीरक जीव असंख्यात गुण, क्योंकि यहाँ पर अपर्याप्त मनुष्यों को भी लेना चाहते हैं। अभी तक के स्थान तो पर्याप्तों के थे, समय दृष्टियों के थे। उनसे 9 प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात गुणे हैं, और उनसे 8 प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात गुणे हैं। ये तो 10, 9, 8 तो मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा संख्यात गुणा ही कह दिया। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में जानना चाहिए। यह क्या विशेषता होगी?
10 वाला स्थान भी
यह संख्यात गुणा ही कहेंगे। किंतु इतनी विशेषता है, असंख्यात गुणे के स्थान में संख्यात गुणा करना चाहिए। आनत कल्प से लेकर 9 ग्रवेक तक के देवों में 10 प्रकृतियों के उदीरक जीव सबसे स्तोक है, क्योंकि यहाँ मिथ्या दृष्टि अभी कम है। उनसे 6 प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात गुणे हैं।
ये 6 वाले लिए?
हाँ, 10 वाले के बाद 9 वाले को नहीं लिया, 6 वाले को लिया।
साइक और उपसंहार।
हाँ, ये कौन से है?
शायिक और औक्षणिक।
हाँ, शायिक समय विषय और औक्षणिक वाले, उनसे नौ प्रकृतियों के उदीरग युग संख्यात गुणे हैं। दस और नौ के बीच में वो छह वालों का लिया। उनसे आठ प्रकृतियों के उदीरग युग संख्यात गुणे हैं और उनसे सात प्रकृतियों के उदीरग युग संख्यात गुणे हैं। ये सात वाले कौन से हो गए?
वेदक समय दृष्टि।
हाँ, वेदक समय दृष्टियों की मुख्यता है। औक्षणिक वालों
की
वो ये स्थान होगा, परंतु वेदकों की मुख्यता है। इसी प्रकार अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है इनमें दस प्रकृतियों के उदीरक जीव नहीं है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। हाँ, वहाँ सम्यक दृष्टि संख्या गुणे है। मिथ्या दृष्टियों से सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम तो सबको ग्रेवेक में देखते हैं ना मिथ्या दृष्टि को, हमें लगता है सभी मिथ्या दृष्टि भरे हो।
रवि लगी मूली कभी होगा
नहीं, वहाँ जाने के बाद भी मिथ्यात्व में आने वाले जीव है वहाँ पर, फिर भी संख्या उनकी अल्प होगी, सम्यक दृष्टियों की संख्या ज्यादा है। इस प्रकार अल्प बहुत्व के समाप्त होने पर प्रकृति स्थान उदीर्णा में सत्रह नियोग द्वार समाप्त हुए। सत्रह समाप्त हुए, परंतु अभी तो हम देखें ना, छह का स्थान था या पांच का, फिर ज्यादा हो जाएगा तो कहेंगे बुझेगा, फिर चार का था और दो का हो गया तो कहेंगे अल्पतर, नहीं था और शुरू होगा तो कहेंगे अवक्तव्य, या उतना का उतना रहेगा तो कहेंगे अवस्थित। तो ये बात अभी चलेगी। एतो भुजगार प्रवेशगो, आगे भुजगार प्रवेशक का अधिकार है, यानी भुजगार उदीर्णा, उदीर्णा ही चल रही परंतु भुजगार रूप से नहीं। ये अभी सत्रह के बाद ये एक सौ है, सत्रह प्लस एक ऐसा कहेंगे हम। देखो, क्योंकि हम इसमें देखते हैं पद निक्षेप और वृद्धि भी होगी बाद में इसमें, अभी तो भुजगार आ गया है। प्रकृति स्थान उदीर्णा की बात चल रही है, उसमें हम भुजगार। इसके आगे, इससे आगे प्रकृति स्थान उदीर्णा में भुजगार प्रवेशक करना चाहिए, इस प्रकार यह प्रतिज्ञा वचन कहने योग्य है। तथा अर्थपदम कायोगम, यानी यहाँ अर्थपद बताएंगे, यानी कुछ उसका विशेष तथ्य बताएंगे, उसका नियम बताएंगे, उसके विषय में अर्थपद करना चाहिए। उस भुजगार प्रवेशक प्ररूपणा में सर्वप्रथम अर्थपद की प्ररूपणा करनी चाहिए, अन्यथा भुजगार आदि पद विषयक निर्णय नहीं हो सकता। यथा अनंतर अतिक्रांत समय में हुए स्तोकतर प्रकृतियों के प्रवेश से, क्या कहते हैं अनंतर अतिक्रांत, अनंतर यानी इमीडिएट, नेक्स्ट के बारे में भी अनंत शब्द आता है और पूर्व के बारे में भी आता है, परंतु अतिक्रांत यानी जो बीत गया है उसकी बात। अनंतर अतिक्रांत समय में हुए यानी पूर्व समय में हुए। बड़े बड़े शब्द आए तो क्या हुआ, अपनी भाषा में अनंतर पूर्व कहो तो चले। यानी अनंतर पूर्व समय में हुए स्तोकतर यानी अल्पतर प्रकृतियों के प्रवेश से, यानी इन कंपैरिजन वर्तमान समय में बहुतर प्रकृतियों को प्रवेश कराता है। दो समयों की कंपैरिजन का चल रही है, तो पूर्व समय से अब वर्तमान समय में अधिक प्रकृतियों की उदीर्णा करने वाले को भुजगार प्रवेशक कहेंगे, यह भुजगार प्रवेशक है। अनंतर अतिक्रांत समय में हुए बहुतर प्रकृतियों के प्रवेश से यानी इन कंपैरिजन वर्तमान समय में स्तोकतर प्रकृतियों को प्रवेश कराता है, यह अल्पतर प्रवेशक अनंतर अतिक्रांत समय में और वर्तमान तो के ऊपर बिंदिया है, वर्तमान समय में अभी दोनों में मैं लगाया उतनी ही प्रकृतियों को प्रवेश कराता है। क्योंकि हमने देखा लगातार वो एक प्रकृति वाला अंतर्मुख चलेगा तो लगातार उसका अवस्थित चलेगा, एक से उधर से समय दो हो जाएगा तो गुजगार कहेंगे, दो से एक होगा तो अल्पतर कहेंगे। यह अवस्थित प्रवेशक है, अनंतर अतिक्रांत समय में अप्रवेशक होकर, जैसे ग्यारहवें गुण स्थान में है वर्तमान समय में यह हुआ है, समय में प्रवेश कराता है यानी दसवें गुण स्थान के प्रथम समय में प्रवेश कराता है। यह अवक्तव्य प्रवेशक है, इस प्रकार अर्थपद प्ररूपणा समाप्त हुई, ये उसके नियम बताए थे। अब यहाँ पर समुत्कीर्तना से लेकर अल्प बहुत्व तक 13 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य, अभी भुजगार में अनुयोग द्वार बताएंगे। उनमें से सर्वप्रथम समुत्कीर्तना को बतलाते हैं, ये पहला यानी प्रकृति स्थान उदीरणा में भुजगार, उसका पहला अनुयोग। यथा समुत्कीर्तनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओव और आदेश। ओव से भुजगार अल्पतर अवस्थित और अवक्तव्य पद के उदीरक जीव है, ये पाए जाते हैं, बस इतना बताना है समुत्कीर्तना का कार्य। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, मनुष्य त्रिक में भी है कि अवक्तव्य वाला तो मनुष्यों में घटित होगा। आदेश से नारकियों में भुजगार अल्पतर और अवस्थित पद के उदीरक जीव है, इसी प्रकार यानी यहाँ अवक्तव्य वाले नहीं लिए, सब नारकी सब तिर्यंश मनुष्य पर्याप्त और सब देवों में जानना चाहिए। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए, इस प्रकार सुगम होने से और अल्प वर्णनीय होने से यानी उसका वर्णन अधिक करने की जरूरत नहीं है, समुत्कीर्तनानुगम को उल्लंघन कर स्वामित्व का व्याख्यान करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। क्योंकि गुणस्थान वही का वही रहने पर भी आवाज बहुत आ रही है, देखो अभी हम क्या देख रहे हैं कि वही का वही गुणस्थान है, 10-9-8 वाला भी मिथ्या दृष्टि का है, उसमें भी 8-9 हो जाएगा, 9-10 हो जाएगा, भुजगार कहेंगे 10-9-8 कुछ होगा तो अल्पतर
अवस्थित कहेंगे,
और उतना का उतना कुछ समय तक रहेगा तो अवस्थित कहेंगे। ये तो तीन तो हो गए ही सर्वत्र, अवक्तव्य वाला मात्र उष्ण श्रेणी से उतरते समय तदो सामित्तम, उसके बाद स्वामित्व का अधिकार है, यह सूत्र सुगम है। भुजगार अपदर अवर्थित पवेशको को होई, भुजगार अल्पतर अवस्थित पद का प्रवेशक कौन जीव है, यह सूत्र सुगम है। अन्न दरो, अन्यतर उक्त पदों का प्रवेशक है यानी कोई भी, मिथ्या क्या करना मिथ्या हुआ, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीव स्वामी है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी किसी गुणस्थान में वो तीन तीन ऑप्शंस है ना, वो औषमिक हो शायक हो वैदक हो कोई भी, और कोई भी किसी भी गुणस्थान में तो दोनों के प्रवेशक, एक का प्रवेशक और बिना प्रवेश, यानी भय जुगुप्सा दोनों का नहीं है, ऐसे तीन तीन स्थान हो गए तो उसमें तो ये तीनों ही घटित हो गए। अवत्तव प्रवेशको को होई, अवक्तव्य पद का प्रवेश कौन, प्रवेशक कौन जीव है, यह पृच्छा वाक्य सुगम है। अन्नदरो उवसामनादो परिवद मानगो, उपशमना से गिरने वाला अन्यतर जीव अवक्तव्य पद का प्रवेशक है। जीव हुआ है, जीव उवसामनादो परिवद मानगो यानी गिरने वाला, हाँ को हुई वहाँ प्रश्न चिन्ह चाहिए था ऊपर सूत्र में। अवत्तव प्रवेशको को हुई वहाँ प्रश्न चिन्ह करना। अब यहाँ उसका स्पष्टीकरण दे रहे 85 पृष्ठ पर। सर्वोपशम करके गिरने वाला प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक जीव अथवा प्रथम समयवर्ती देव यानी मरकर देव होने वाला, या तो दसवें में आने वाला, या जब अप्रवेशक था ग्यारहवें में मरकर देव हुआ तो डायरेक्ट चौथे में आ गया, तो वे अवक्तव्य पद का प्रवेशक है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है इनमें अवक्तव्य पद का प्रवेशक प्रथम समयवर्ती देव है यह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब मार्गणा बता दी मनुष्य की तो उसमें वो मरकर देव होने वालों की अपेक्षा ये बात नहीं होगी। यहाँ पर आदेश से नारकियों में ओघ के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। इसी प्रकार सब नारकी सब तीरियंच और सब देवों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि पंचेंद्रिय तीरियंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और अनुदिश से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में भुजगार अल्पतर और अवस्थित पद किसके होते हैं तो अन्यतर के होते हैं, यानी वहां रहने वाले के होते हैं अपने अपने। सर्वासिद्धि में तो अनुदिष्ट है, वहां तो सारे ही सम्य दृष्टि है तो किसी के भी हो सकते हैं, और यहाँ तो सारे मिथ्या दृष्टि है, उनके 8, 9, 10, 9, 8 वाले स्थान में से किसी को भी अल्पतर भुजागार अवस्थित होगा। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये तो भुजगार में समुत्कीर्तना हुई, भुजगार में स्वामित्व हुआ। अब भुजगार में एक जीव की अपेक्षा भी काल की बात करेंगे। एक जीवेन कालो,
ये जो नारकी तीरियंच और देव में कहा हाँ। उसी अपेक्षा से ये पंचेंद्रिय तीरियंच अपर्याप्त, मनुष्य पर्वत और अनुदिश से लेकर सर्वसिद्धि देव में कथन होगा ना। हाँ, तीन पद ये वहाँ
देखो ऐसी बात है हाँ। अन्यत्र क्या कहा, सम्यक दृष्टि के होगा अथवा मिथ्या दृष्टि के होगा।
हाँ, अच्छा
यहाँ ये कथन होगा क्या?
नहीं, यहाँ पे मिथ्या दृष्टि,
यहाँ हम इतना ही कहेंगे किसी के भी होता है, क्योंकि तीर्यंच लब्धि अपर्याप्त मनुष्य अपर्याप्त में सारे ही मिथ्या दृष्टि है, तो हम कहेंगे किसी के भी होता है, वहाँ सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि पद लगाने की जरूरत नहीं है। सर्वार सिद्धि आदि वो जो नीचे वाले
सम्य दृष्टि,
हाँ तो किसी के भी होता है, तो वहाँ मात्र सम्य दृष्टि है, इसलिए मिथ्या दृष्टि के होता है या सम्य दृष्टि के होता है ये कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए मात्र किसी के भी होता है कहा। जहाँ दोनों ही गुणस्थान है, समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों ही है, वहाँ कहेंगे मिथ्या दृष्टि के भी हो सकता है, समय दृष्टि के भी हो सकता है, ये दोनों का अलग से कथन वहाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त तक में सारे मिथ्या दृष्टि है और अनुदिश अनुत्तर में सभी समय दृष्टि है, इसमें एकमात्र अन्य तर्क होता है इतना ही कह दिया। अब एक जीव की अपेक्षा काल, ये भुजगार वाला तीसरा है, प्रकृति स्थान उदीर्णा में भुजगार का तीसरा ग्रंथ, उसका अनुयोग नंबर 3। स्वामित्व के बाद एक जीव विषय काल का व्याख्यान करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। उसका ऊह और आदेश के भेद से दो प्रकार का निर्देश है, उनमें से ऊह का कथन करने के लिए कहते हैं। भुजगार प्रवेशको केवचिरम कालादो होदी, भुजगार प्रवेशक का कितना काल है, भुजगार का कितना काल का अर्थ समझते हैं?
कितने समय तक भुजागर करने वाले जीव पाए?
लगातार भुजागर होना चाहिए। मान लेते एक में से दो में आया या आठ में से नौ में आया, तो इमीडिएट नौ से दस होगा यदि तीसरे समय में, तो कहेंगे भुजागर का लगातार का काल है। बीच में अगर नौ 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 होता रहे, बाद में दस हो जाएगा, तो बीच में अवस्थित कहलाएगा। तो लगातार भुजागर 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 होगा तो हम कहेंगे भुजागर का काल। तो कहते यह सूत्र सुगम है। जघन्य ने यह समो, जघन्य काल एक समय है, वह कैसे? सात प्रकृतियों का प्रवेशक होकर स्थित कोई एक मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि जीव भय और जुगुप्सा में से किसी एक का प्रवेश कराकर भुजगार प्रवेशक हो गया। सात वाला मिथ्या दृष्टि कौन होगा?
संयोजन।
विसंयोजन नहीं, संयोजन। अभी आवली काल चल रहा है उसका, और भय और जुगुप्सा से रहित है। अब उसने क्या किया? एक का प्रवेश कराकर उसके या भय या जुगुप्सा का उदय शुरू हुआ, भुजगार प्रवेशक हो गया। पुनः दूसरे समय में उतनी प्रकृतियों की ही उदीर ना करने वाले उसके भुजगार प्रवेशक का जगन्य काल एक समय प्राप्त हुआ। सात में से आठ में आया और आठ का ही रहा, तो एक समय के लिए भुजगार हुआ। इसी प्रकार अन्यत्र भी यथासंभव एक समय काल जान लेना चाहिए, यानी जितनी है उसमें से आठ वाला नौ का नौ वाला जो जहाँ यथा योग्य है वहाँ ये सभी जान लेना चाहिए। वो अवस्थित में जाएगा, परंतु उसका भुजगार का एक ही समय हुआ,
वापस मान लो आठ में जाता
वो अल्पतर होगा।
भुजगार
एक ही समय, परंतु वापस एक समय में नहीं लौटेगा उस स्थान पर। अंतर में हमने देखा था एक्सट्रीम वालों को अंतर मुहूर्त लगता है, बीच वालों के लिए एक समय घटित हो सकता है। अब यथा दस प्रकृतियों की उदीर्णा करने वाला जो जीव भय और जुगुप्सा की उदय विच्छित्ति के द्वारा अल्पतर पद करके अवस्थित है।
नहीं, आप एक पेज ज्यादा,
एक पेज उलट गया मेरा, वही कुछ मैं भी
समझ
क्या हो क्या गया बीच में। कहाँ पर देखो, सात प्रकृति का प्रवेशक स्थित कोई एक मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि के भी भय और जुगुप्सा से रहित वाला होगा कि नहीं होगा? किस सम्यक दृष्टि के होगा? वेदक सम्यक दृष्टि के होगा, चौथे गुणस्थान वाले वो लेना, क्योंकि वो भय जुगुप्सा से रहित था, अब एक का प्रवेशक हो गया तो आठ वाला हो गया। अब आठ वाला लगातार आठ का नौ, नौ का दस होए तो भी ये बात हम सोच सकते हैं, तो लगातार भुजगार कहेंगे। अब यहाँ पर एक समय के लिए भुजगार हुआ, ये तो जघन्य काल उन्होंने बता दिया। अब कहते उत्कस से न चप्तारी समया, उत्कृष्ट काल चार समय है। यथा उपशम सम्यक दृष्टि, प्रमत्त संयत, संयता संयत और असंयत सम्यक दृष्टि जीव क्रम से, तो उपशम सम्यक दृष्टि प्रमत्त संयत के लिए क्रम से यानी चार, संयता संयत उपशम सम्यक दृष्टि के लिए पांच वाला भय उपसा से रहित की बात चल रही है, और छह प्रकृतियों की उदीर्णा कर रहा है वो चार वाला जीव, ए सॉरी चौथे गुणस्थान वाला छह प्रकृतियों की उदीर्णा करने वाला है। पुनः उपशम सम्यक्त्व का काल एक समय मात्र शेष है कि उनके सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होने पर एक भुजगार समय प्राप्त हुआ। यानी वो चार पांच या अपने अपनी छह की उदीर्णा कर रहे थे, उपशम सम्यक्तों का काल चल रहा था। अब उपशम सम्यक्तों में एक समय बाकी था, सासादन को प्राप्त हुआ तो एक भुजगार समय प्राप्त हुआ। तो सासादन में कौन से स्थान है? 9, 8, 7 थे। वो चार वाला हो या पांच वाला हो या छह वाला हो, उसका सात वाला स्थान हुआ। वही गुप्ता से रहते थे ना वहां। तदनंतर समय में मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर दूसरा भुजगार समय प्राप्त होता है। ये पहला समय यहाँ पर हुआ, सासादन में आया।
सासादन एक समय वाला,
एक समय। और दूसरे समय में मिथ्यात्व में गया तो भुजगार, दूसरा भुजगार समय प्राप्त होता है। हाँ, यहाँ 9, 8, 7 वाला था ना, वहाँ 10, 9, 8 वाला, 8 वाला होगा। सासादन में से गया है, 8 वाला होगा। अभी भुजग इससे रहित ही चल रहा है, उसका भय जुगुप्सा से रहित ही चल रही बात। तदनंतर समय में भय के प्रवेश कराने पर तीसरा भुजगार समय प्राप्त होता है। और तदनंतर समय में जुगुप्सा के प्रवेश कराने पर चौथा भुजगार समय प्राप्त होता है। यानी ये चार समय लगातार हुए। औषमिक समय दृष्टि लिया, भय जुगुप्सा से रहित वाला स्थान चल रहा था एक समय में, वो तो एक समय के लिए सासादन में गया, एक ही समय के लिए, तो भय जुगुप्सा से रहित वाला ही सात वाला स्थान हुआ। चार में से सात हुआ या पांच में से हुआ या छह में से, उससे कुछ नहीं, भुजगार हुआ इतना ही लेना। उसके बाद मिथ्यात्व में गया तो और एक प्रकृति बढ़ गई, सासान में तो मिथ्यात्व नहीं था, यहाँ पर मिथ्यात्व वाला उदय और एक बढ़ गया, तो वो आठ वाला स्थान हो गया। अभी आठ वाला भी भय जुगुप्सा से रहित था, उसमें भय का प्रवेश हुआ तो नौ का हुआ, और जुगुप्सा का भी प्रवेश हुआ तो दस का हुआ। इस प्रकार भुजगार प्रवेशक के उत्कृष्ट रूप से चार समय प्राप्त होते हैं। अथवा उतरने वाला तथा अन्यतर संज्वलन की उदीर्णा करने वाला, अन्यतर अनिवृत्ति उपशामक जीव, देखो क्या कहते हैं, श्रेणी से उतरने वाला,
संज्वलन का उदीर्णा,
एक किसी संज्वलन का उदीर्णा करने वाला जीव, पुरुष वेद का अपकर्षण करके एक समय तक भुजगार प्रवेशक हो गया, यानी एक से दो हो गए उसके। पुनः तदनंतर समय में मरकर देवों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में वो उत्पन्न कर, बराबर तो नहीं आया, दूसरा भुजगार समय प्राप्त हुआ। अभी भी द्वितीय उपशम चल रहा है उसका, देवों में उत्पन्न हुआ है, चौथा गुण स्थान है, ये दूसरा भुजगार हुआ। पुनः उसके बाद अनंतर समय में भय की उदीर्णा करने वाले उसके तीसरा भुजगार समय प्राप्त हुआ। और तदनंतर समय में जुगुप्सा के उदय से परिणत हुए उसके चौथा भुजगार समय प्राप्त हुआ। देखो जब अनिवृत्तिकरण में था, एक से दो हुआ, वहां तो भय जुगुप्सा की कोई बात ही नहीं थी, एक से दो हुआ, फिर देव में गया, वहाँ कितना होगा देव में?
6, 7, 8 वाला,
6 वाला होगा ना, भय जुगुप्सा से रहित वाला देखा था, तो पहले समय में 6 वाला,
6 वाला,
दूसरे समय में 7 वाला, तीसरे समय में 8 वाला। इस प्रकार भुजगार प्रवेशक के चार समय प्राप्त हुए, दो पद्धति से बताया। अपदर पवेशको केवचिरम कालादो, नहीं नहीं एक संज्वलन का था, एक प्रकृति वाला
दो
था,
का हो गया,
तो दो का हो गया। अभी उतरते हुए अनिवृत्तिकरण में है, दो का ही उदय है, एक पुरुष और एक संज्वलन, दो प्रकृति स्थान, एक प्रकृति स्थान था, एक से दो हुआ, दो से छह हुआ, छह से सात, सात से आठ। द्वितीय उपशम सम्यक फिर, तभी तो हमने छह वाला स्थान लिया। द्वितीय उपशम रहा तो उसका छह वाला स्थान था। क्योंकि जब तक वो दो वाला स्थान है तो द्वितीय उपशम चल रहा है ना। नीचे आता है छठे गुणस्थान में या नीचे चौथे, तो हमें सोचना पड़ेगा ये द्वितीय उपशम ही है कि अभी वेदक हो गया है, उसकी तो बात नहीं। नीचे तो एक एक प्रकृति का काल अधिक समय तक। हाँ, द्वितीय उपशम सम्यक्तों का काल अंतर्मूर्त है। तो सातवें गुणस्थान में द्वितीय उपशम करता है, पूरी श्रेणी चढ़ के उतरता है और फिर मुनिराज ही रहेंगे तो छठा सातवां चलेगा। और वही कहीं द्वितीय उपशम के काल में मरकर देव हुआ तो वहां भी देव के अपर्याप्त अवस्था में द्वितीय उपशम है। शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले काल तक, पर्याप्त होने पर यानी शरीर पर्याप्ति हो पूरी होने के पश्चात द्वितीय उपशम नहीं रहता, वो नियम से वेदक हो जाएगा। यह नीचे के देवों में सासादन में भी आ सकता है। अब ग्रेवेक तक लेना है तो मुख्यत्व में भी जाएगा। मोस्ट तो ऊपर के देवों में जाते हैं। हाँ। क्योंकि सम्यक्त्व से छूटने वाले बहुत अल्प हो गए, एकाध जी होगा। हाँ। वेदक होता है रेगुलर, जैसे औपशमिक वाला वेदक होता है वैसे ये भी वेदक समय दृष्टि में। अभी अल्पतर का बता रहे हैं। अपतर प्रवेशको केवचिरम कालादो हो दी, अल्पतर प्रवेशक का कितना काल है यह पृच्छा वाक्य सुगम है। जघन्य न ये समो, जघन्य काल एक समय है। क्योंकि एक समय तक अल्पतर पद करके तदनंतर समय में भुजगार या अवस्थित पद को प्राप्त हुए जीव के उक्त काल उपलब्ध होता है। इसे उक्कस्य न तीन्य समया, उत्कृष्ट काल तीन समय है। भुजगार में हमने चार देखे थे। यथा दस प्रकृतियों की उदीर्णा करने वाले मिथ्यादृष्टि जीव के भय की विच्छित्ति हो जाने से नौ की उदीर्णा होकर एक अल्पतर समय प्राप्त हुआ। तदनंतर समय में जुगुप्सा की उदय विच्छित्ति हो जाने से आठ प्रकृतियों की उदीर्णा होकर दूसरा अल्पतर समय प्राप्त हुआ। तदनंतर समय में सम्यक्त को प्राप्त हुए उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की विच्छित्ति हो जाने से तीसरा अल्पतर समय प्राप्त हुआ। देखो दस वाला था, भय की विच्छित्ति होने पर नौ वाला हो गया,
फिर
आठ वाला हो गया,
छह वाला हो गया,
आठ में से तीसरा अल्पतर यानी वो छह वाला हो जाएगा। इस प्रकार अल्पतर प्रवेशक का उत्कृष्ट काल तीन समय होता है। ये पहले हम घटित घटा रहे ना, दस से नौ आठ करके फिर वो समय दृष्टि किया उसका। इसी प्रकार संयमासंयम को प्राप्त होने वाले असंयत समय दृष्टि जीव के तथा संयम को प्राप्त होने वाले संयता संयत जीव के अल्पतर प्रवेशक संबंधी तीन समय मात्र उत्कृष्ट काल की प्ररूपणा करनी चाहिए। हो सकता है नौ आठ सात हो या आठ सात छः हो, जो यथायोग्य है वो वहाँ पर, और एक अल्प हो जाता है वहाँ पर। पहले उसी गुणस्थान में रहते हुए
आठ सात छः हो,
हाँ, एक भय से रहित, एक जुगुप्सा से रहित, ऐसे दो समय वहाँ घटित हुए और तीसरा ऊपर के गुणस्थान में गया तो और एक घट गया वहां पर। ये तीन समय हो गया। अब कहते अवट्ठित प्रवेशको केवचिरम कालादो हो दी। हाँ, शाइक हो वेदक हो अपना अपना ले लेना वहाँ पर, शाइक वाला शाइक के शाइक वाला पांचवे वाला शाइक संयत हो जाएगा, तो उसके भी अपने स्थान में रहते हुए पहले दो अल्पतर हुए थे।
यहाँ पे संयम संयम को प्राप्त होने वाला असंयत लिया तो असंयत में आठ वाला स्थान लिया,
आठ
से सात वाला हो गया,
आठ से सात, सात से छह, ये किसके लिए हो सकता है?
नहीं ये तो छह वाले नहीं होगा ना,
शाइक वाले के नहीं होगा।
हाँ शाइक शाइक वाले के होगा,
या वेदक वाले के नौ आठ सात छह सात थे।
अच्छा अभी पांच
नौ आठ और सात, नौ से आठ हुआ आठ से सात हुआ वेदक समय दृष्टि, और सात से वो संयता संयत हो गया। तो संयता संयत में कौन सा होगा उसका? आठ सात छह होते तो छह हो जाएगा उसका, वेदक के छह हो जाएगा, अल्पतर हुआ ना उसका। वेदक वाला छह वहीं से पांच नहीं हो जाएगा क्योंकि उसका हमने मिनिमम देखा है, पहले उनको घटाकर ऊपर ले गए। अब कहते अवस्थित प्रवेश वो केवल चिरम कालादो हो दी, अवस्थित प्रवेशक का कितना काल है यह सूत्र सुगम है। जहन्य न एक समय, जघन्य काल एक समय है, वह कैसे? जो नौ प्रकृतियों का प्रवेशक जीव जिगुप्सा के आने से एक समय तक गुजगार पर्याय से परिणत हुआ,
दस वाला
यानी दस वाला हो गया, तदनंतर समय में उतनी ही प्रकृतियों की उदीर्णा के साथ अवस्थित रहा, फिर तदनंतर समय में भय की विच्छित्ति के द्वारा अल्पतर पर्याय को प्राप्त हो गया, यानी पहले नौ वाला था,
दो समय के लिए
दस वाला कर रहा था, फिर जुगुप्सा उसमें आकर ज्वाइन हुई तो दस का हो गया,
दो समय
परंतु भय का समाप्त हुआ तो एक समय के लिए दस का होकर,
नहीं दो समय के लिए दस का हुआ तो अवस्थित
अवस्थित घटित करना है, अंतर नहीं घटित करना, तो दो समय तक दस का रहा
और पीछे आठ वाला, अरे
हाँ, तो एक समय के लिए अवस्थित हुआ। जब नौ में से दस का हुआ तो भुजगार कहा,
हाँ।
दस का दस रहा तो अवस्थित कहा, अब दस में से फिर नौ का होगा क्योंकि भय की विच्छित्ति। यानी नौ में से दस, दस में से दस रहा और फिर नौ का हो गया। पहला नौ भय के साथ था, बाद में जो हुआ ना वो जुगुप्सा के साथ है। देखो इस उसके अवस्थित पद का जघन्य काल एक समय मात्र प्राप्त हुआ, इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए। अब कहते उत्कर्ष से ना अंतो मूर्तम, लगातार किसी एक ही पद में है वो तो ये उसका उत्कृष्ट काल अवस्थित का अंतर्मूर्त है। यथा दस प्रकृतियों की उदीर्णा करने वाला जो जीव भय और जुगुप्सा की उदय विच्छित्ति के द्वारा अल्पतर पद करके अवस्थित है, पुनः जब तक उसके भय और जुगुप्सा का अनुदय बना रहता है तब तक उसके अवस्थित प्रवेशक संबंधी अंतर्मूर्त प्रमाण उत्कृष्ट काल प्राप्त हो जाता। अब कहते अवक्तव्य प्रवेशको केवचिरम कालादो होदी, अवक्तव्य प्रवेशक का कितना काल है ये बताने की जरूरत है क्या?
नहीं।
कितना होगा?
एक
समय। और उत्कृष्ट काल?
एक।
अंतर्मूर्त
नहीं, नहीं
एक बार वो प्रवेशक हो गया, अवक्तव्य ने नहीं था और हुआ तो हुआ, तो दूसरे बार और होने के लिए क्या हुआ? जीरो में से कुछ ना कुछ हुआ, जीरो था तो एक का हुआ या जीरो था तो देव होकर छह का हुआ, उसको हमने अवक्तव्य कहा। अब छह में से क्या होगा? सात होगा तो उसको अवक्तव्य कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो इसका जघन्य कहो या उत्कृष्ट कहो एक ही समय होगा, इसमें जघन्य उत्कृष्ट कुछ नहीं लगेगा, नहीं था और हो गया उसको अवक्तव्य कहेंगे। तो उसका कितना काल है? तो यह सूत्र सुगम है। जहन नुक्कस्य न ये समो, दोनों एक में लग। हाँ, पहले समय में देवों में, अब जीरो में से वहाँ छह हो जाएंगे डायरेक्ट, या जीरो में से सात या आठ हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। और क्षायिक वाला ही होगा तो हमने बता दिए चिताकार, क्षायिक वाला भी हो सकता है, नित्योक्षम हो या क्षायिक भी हो। और
वेदक
उसका द्वितीय उपशम का काल पूरा हो जाएगा, ऊपर जाके ही बाद पूरा हो जाएगा
अंतर्मुख के बाद।
तो छह सात आठ ये तीन ही है वहाँ पर, कुछ भी हो फिर भी उसको हम अवक्तव्य कहेंगे। तो कहते जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि सर्वोपशामना से गिरते हुए प्रथम समय को छोड़कर अन्यत्र अवक्तव्य पद असंभव है। अवक्तव्य दिय हुआ, इस प्रकार ओघ से कालानुगम समाप्त हुआ। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य त्रिक में अवक्तव्य पद होगा अन्यत्र नहीं होगा, इसलिए ओघ के समान बन जाएगा। आदेश से नारकियों में भुजगार अल्पतर और अवस्थित प्रवेशक का काल ओघ के समान है, यानी उसमें अवक्तव्य नहीं, बाकी तो काल ओघ के समान घटित होगा। भुजगार का कितना देखा था? जघन्य सबका एक समय था, भुजगार का उत्कृष्ट चार समय, अल्पतर का उत्कृष्ट तीन समय, और अवस्थित का उत्कृष्ट
एक समय,
एक अंतर्मुख,
एक समय से लेकर
सबसे लिए, सबके लिए जघन्य एक समय है।
और उत्कृष्ट
फर्क है, अलग अलग। इसी प्रकार सब नारकी सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक, सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर नौ ग्रवेक तक के देवों में जानना चाहिए, क्योंकि वो देवों में वो मिथ्यात्व में से चौथे में जाएगा तो ही और एक समय बढ़ेगा ना वहां पर, भुजगार में अगर हम लेते हैं। पंचेंद्र तीर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में भुजगार प्रवेशक का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय है, क्योंकि आठ से नौ होगा, नौ से दस होगा,
बाकी कोई स्थान ही नहीं,
तो वहां तो कोई गुणस्थान बदलने का चांस नहीं है, तो और एक समय नहीं बढ़ सकता है। इसी प्रकार अल्पतर प्रवेशक का काल है, यानी वो भी दो समय होगा। अवस्थित प्रवेशक का काल ओघ के समान है, यानी अंतर्मूर्त अधिक से अधिक। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में भुजगार और अल्पतर प्रवेशक का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल तीन समय है। अब इसमें ऐसा है ना, द्वितीय ऑप्शन में से वेदक कराओ तो एक प्रकृति ऐसे भी बढ़ जाएगी,
और पीछे बाई जो ऑप्शन है।
अवस्थित प्रवेशक का काल ओघ के समान है, इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये अल्पतर का तीन समय कैसे होगा अश्विन भाई?
अनुदेश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि में ना, विसंयोजना की,
विसंयोजना की अपेक्षा करना,
और पीछे भय और जुगुप्सा,
एक प्रकृति वहाँ और भी घटी, और फिर भय जुगुप्सा में और घटाना। विशेषार्थ, मनुष्य त्रिक में प्रथमादि सर्वोपशामना तक के सब गुणस्थान संभव है, यानी पहले गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक सब है, इसलिए उनमें ओघ प्ररूपणा अविकल बन जाने से वह ओघ के समान जानने की सूचना की है। परंतु सब नारकी सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक, सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर नौ ग्रवेक तक के देवों में सर्वोपशामना की प्राप्ति संभव नहीं होने से उनमें तीन पदों की अपेक्षा काल का निर्देश किया। ये तीन पद पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त और अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में भी संभव है, परंतु पंचेंद्रिय रेंज अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में एक मिथ्यात्व गुणस्थान होने से वहां भुजगार और अल्पतर प्रवेशक का उत्कृष्ट काल दो समय ही बन जाता है तथा अनुदिशादि में जो उपशम समय दृष्टि और कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि उत्पन्न होता है उसके यह काल तीन समय भी बन जाता है
या कृतकृत्य लिया
हाँ कृतकृत्य लिया है तो वो आवली में प्रवेश कर जाएगा तो अल्पतर हो जाएगा
और
भय जुगुप्सा के कारण और दो समय घटित होंगे। उपशम समय दृष्टि के प्रथम समय में सम्यक प्रकृति की, दूसरे समय में भय की और तीसरे समय में जुगुप्सा की उदीरणा कराने से भुजगार प्रवेशक का तीन समय उत्कृष्ट काल बन जाता है। तथा कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि के प्रथम समय में सम्यक प्रकृति को, दूसरे समय में भय को और तीसरे समय में जुगुप्सा को अनुदीरणा रूप से परिणत करने पर अल्पतर प्रवेशक का तीन समय उत्कृष्ट काल बन जाता है। शेष कथन सुगम। ये बात ख्याल में आई? वह विसंयोजना की बात नहीं ली है। क्यों नहीं ली है?
ऐसे तो विसंयोजना होगी ना, वहाँ पे भी
होगी ना,
देखा है हमने।
विसंयोजना में क्या फर्क पड़ेगा?
कुछ नहीं, वहाँ पे भी एक प्रकृति का
अनंत आनंदी थी नहीं, उदय रूप उसकी उदीरणा नहीं ही
अच्छा,
हो रही थी।
सॉरी,
तो समाप्त अच्छा, तो क्या हुआ? कुछ नहीं फर्क,
कुछ फर्क नहीं।
उदीरणा वाला नहीं लेना, कृतकृत्य वेदक
वाला।
मैंने भी हाँ कह दी थी आपको, ये पढ़ने की बात ख्याल में आया जा रहा। अब कहते हैं ये जीव है ना अंतरम, अभी तक हम काल देख रहे थे, अब अंतर देखना है। एक जीव की अपेक्षा अंतर, ये भुजगार का भी चार नंबर है ना। हाँ, हमने समुत्कीर्तना, स्वामित्व और काल देखा, अभी अंतर देखना है। अधिकार का परामर्श करने वाला यह वाक्य सुगम है। भुजगार अपदर अवट्ठित पदेसग अंतरम केवचिरम कालादो होदी। भुजगार अल्पतर और अवस्थित प्रवेशक का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। जहन्य ने यह समो, जघन्य अंतरकाल एक समय है। पहले हम काल देख रहे थे, अभी अंतर देख रहे। यथा सर्वप्रथम भुजगार को कहते हैं, संज्वलन की उदीर्णा करने वाला उतरता हुआ एक उपशामक जीव, यानी एक संज्वलन की उदीर्णा हो रही थी, पुरुष वेद का अपकर्षण करके भुजगार प्रवेशक हुआ। इसके बाद तदनंतर समय में उतनी ही प्रकृतियों की उदीर्णा के साथ अवस्थित प्रवेशक होकर उसने भुजगार पद का अंतर किया। पुनः तदनंतर समय में मरकर और देवों में उत्पन्न होकर वह भुजगार प्रवेशक हो गया। पहले एक का था, फिर दो का हुआ, और दो के बाद फिर दो का हुआ, और बाद में छह का हुआ। तो एक से दो हुआ, भुजगार हुआ
एक समय,
फिर एक समय के लिए, और दो का दो, दो ही रहा, बाद में मरा
तीसरे समय,
इसलिए वह एक समय के लिए अंतर हुआ। इस प्रकार भुजगार प्रवेशक का जघन्य अंतर एक समय प्राप्त हो गया। यह अंतर नीचे के गुणस्थानों में भी प्राप्त होता है। कहीं पर भी एक समय के लिए भुजगार किया, उतना ही रहा,
और तीसरे समय में,
और फिर भुजगार किया। जैसे मिथ्या दृष्टि, आठ वाला था,
नौ वाला,
आठ में से नौ वाला हो गया
एक समय,
दो समय के लिए नौ रहा, और फिर
तीसरे समय में वापस दस वाला हो गया।
आठ से नौ वाला हो गया, देखो दोनों रहित था, आठ से नौ से दस हो जाएगा, वो आठ से नौ हो गए ना, यानी एक किसी की उदीरना शुरू हो गई, अब उसमें आकर जुगुप्सा भी ज्वाइन हुआ, परंतु वो दो समय उतना ही रहा, 9 का रहा, फिर 10 का हुआ, तो उसका भुजगार का अंतर हुआ एक समय के लिए, क्योंकि एक समय के लिए अवस्थित रहा ना, वो भुजगार का अंतर कहलाए। शंका, वह कैसे पूछा है? देखो, भय और जुगुप्सा की उदीर्णा से रहित अपने उदीर्णा स्थान की उदीर्णा करने वाला अन्यतर गुणस्थान वर्ती जीव, यह गुणस्थान से कुछ प्रयोजन नहीं, भय और जुगुप्सा से रहित था। भय के आगमन द्वारा एक समय तक भुजगार पद करके पुनः तदनंतर समय में उतनी ही प्रकृतियों की उदीर्णा रूप अवस्थित पद द्वारा, मैंने एक समय में भुजगार किया, दूसरे समय में उतना ही रहा, भुजगार पद को अंतरित करके, यानी भुजगार नहीं हुआ लगातार, एक समय के लिए भुजगार हुआ, दूसरे समय में अवस्थित ही रहा, तदनंतर समय में जुगुप्सा के उदय रूप से परिणत होकर पुनः भुजगार प्रवेशक हो गया। 8 से 9 हुआ, फिर 9 ही रहा, यानी एक समय के लिए अवस्थित रहा, भुजगार का अंतर हुआ, फिर 10 का हुआ। इस प्रकार भुजगार प्रवेशक का एक समय जघन्य अंतर प्राप्त होता है। अब अल्पतर प्रवेशक का कहते हैं, यथा भय जुगुप्सा के साथ विवक्षित उदीर्णा स्थान की उदीर्णा करने वाला अन्यतर गुणस्थान वाला जो जीव भय की उदय विच्छित्ति द्वारा एक समय तक अल्पतर पर्याय से परिणत हुआ, यानी जुगुप्सा का उदय चल रहा है अभी, उतना का उतना रहेगा और एक समय के लिए, पुनः तदनंतर समय में उतनी ही प्रकृतियों की उदीर्णा द्वारा अल्पतर पद का अंतर करके 10 में से 9 पर आया और 9 ही रहा, तदनंतर समय में जुगुप्सा की उदय विच्छित्ति द्वारा अल्पतर को प्राप्त हुआ। एक समय के लिए 10 का था शुरू में, फिर 9 पर आ गया, 9 ही रहा और बाद में 8 का हुआ, उसके अल्पतर पद का जघन्य अंतर एक समय प्राप्त होता है। अथवा जो मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक को ग्रहण कर उसके प्रथम समय में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की उदय विच्छित्ति द्वारा अल्पतर पद को करता है, क्या कहा?
सम्यक
मिथ्या दृष्टि जीव है, 10, 9, 8 वाला कोई स्थान था, उसने सम्यक्व प्राप्त किया, तो 9, 8 सम्यक्व प्राप्त किया होगा, अपशमिक होगा तो अलग होगा और शायक होगा तो, ये शायक नहीं, वेदक होगा तो अलग होगा, सारी मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। तो उसने यथा योग्य जो कुछ किया, अल्पतर किया, पुनः तदनंतर समय में उतनी ही प्रकृतियों की उदीर्णा द्वारा अल्पतर पद का अंतर करता है, यानी एक समय के लिए अवस्थित रहा और तीसरे समय में भय और जुगुप्सा में से किसी एक प्रकृति की उदय विच्छित्ति द्वारा या दोनों की उदय विच्छित्ति द्वारा अल्पतर पद करता है। क्या कहते हैं? पहले 10 वाला था मिथ्या दृष्टि, अब उसने सम्यक तो प्राप्त किया,
8 वाला हो गया,
तो
8 वाला हो गया,
9, 8, 7 होता है या 8, 7, 6 होता है, तो 8 वाला हो गया, 10 वाला होगा तो 8 वाला होगा, क्योंकि एक अनंतानुबंधी और एक मिथ्या, तो 2 की उदय, वहाँ तो उदय नहीं रहा, तो 2 कम हो गए, तो 10 वाला था तो 8 का हुआ, दूसरे समय में भी 8 का ही रहा, 8 के बाद यदि एक की उदय विच्छित होती तो 7 का हो जाएगा, और दोनों की होगी तो 6 वाला हो जाएगा। दोनों उदय विच्छित्ति द्वारा अल्पतर करता है, मिल गया, उसके अल्पतर पद का जघन्य अंतर एक समय प्राप्त होता है। इसी प्रकार असंयत समय दृष्टि के द्वारा संयमा संयम के ग्रहण करने पर या संयता संयत के द्वारा संयम के ग्रहण करने पर अल्पतर पद का जघन्य अंतर एक समय मात्र प्राप्त होता है ऐसा कथन करना चाहिए। इन्हें उतना का उतना अवस्थित रहा और फिर उसने कम कर दिया। अब अवस्थित प्रवेशक का जघन्य अंतर कहते हैं, बीच में भुजगार या अल्पतर होना यही अवस्थित का अंतर है। यथा सात या आठ प्रकृतियों का प्रवेशक करने वाला जो जीव भय के आगमन द्वारा एक समय तक भुजगार पद करता हुआ उस द्वारा अवस्थित पद का अंतर करके पुनः तदनंतर समय में उतनी प्रकृतियों के उदय द्वारा अवस्थित पद करता है। पहले भी अवस्थित था, लगातार मान लेते आठ का था और भय जुगुप्सा किसी में का प्रवेश होने पर नौ का हो गया, नौ का नौ किया उसने, एक समय के लिए भुजगार हुआ, दूसरे समय फिर अवस्थित हुआ, तो एक समय का अंतर हुआ। इसी प्रकार अल्पतर पद का आश्रय लेकर भी अवस्थित प्रवेशक का जघन्य अंतर साध लेना चाहिए। हाँ वही है जो अवस्थित के अल्पतर के अंतर के लिए लिया, यही अवस्थित के लिए अंतर के लिए लिया। अब कहते हैं उक्कस्येन अंतो मुहूर्तम्, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है उसमें सर्वप्रथम भुजगार प्रवेशक का कहते हैं, भुजगार का उत्कृष्ट अंतर। यथा पांच प्रकृतियों की उदीर्णा करने वाले एक संयता संयत जीव ने, ये कौन सा होगा, क्षय क्या ऑप्शन में,
ऑप्शन में
क्षय क्यों नहीं होगा,
मनुष्य
में हो सकता है ना, हाँ आप सबको बयान मत करो। असंयम को प्राप्त होकर प्रथम समय में भुजगार पद का आरंभ कर उसका अंतर किया, क्योंकि एक प्रकृति बढ़ गई ना उसकी, एक कषाय बढ़ गई उसकी। पुनः सबसे उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल तक रहकर अंत में भय और जुगुप्सा के उदय द्वारा फिर से जो भुजगार प्रवेशक हो गया, दो बार भुजगार करना है, एक बार भुजगार क्यों हुआ, क्योंकि नीचे के गुणस्थान में आया, दूसरी बार भुजगार क्यों हुआ, क्योंकि वो तो अन्य प्रकृति उसमें प्रवेश कर गई। उसके भुजगार पद का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त प्राप्त होता है। अथवा चार प्रकृतियों की उदीर्णा करने वाला एक उपशम समय दृष्टि प्रमत्त और अप्रमत्त संयत जीव भय और जुगुप्सा के आगमन द्वारा भुजगार पद का प्रारंभ करके पुनः स्वस्थान में ही अंतर्मुहूर्त काल तक अविवक्षित पर्याय के द्वारा उसका अंतर करके उपशम श्रेणी पर चढ़ा। मैंने पहले भय चार की उदीर्णा कर रहा था, उपशम समय दृष्टि ने यहाँ द्वितीय उपशम ले लिया, अभी श्रेणी के सम्मुख है। फिर भय और जुगुप्सा का आगमन हुआ तो भुजगार हुआ, फिर स्वस्थान में ही अंतर्मुहूर्त काल तक अविवक्षित पर्याय के द्वारा उसका अंतर करके यानी वो भुजगार नहीं रहा क्योंकि अवस्थित चल रहा उसका, उपशम श्रेणी पर चढ़ा और सर्वोपशम करके उतरते हुए यानी भय और जुगुप्सा की बात है ना, देखो उपशम श्रेणी पर चला सर्वोपशम करते हुए उतरते हुए संज्वलन लोक की उदीर्णा करके तथा नीचे गर कर जहाँ जाकर स्त्रीवेद की उदीर्णा करता हुआ भुजगार प्रवेशक हुआ, क्योंकि लव संजलन की करेगा तो भी उसको अवक्तव्य कहेंगे, फिर जब एक में से दो हो जाएगा तब उसका भुजगार हो जाएगा, वहाँ उस जीव के भुजगार पद का उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हुआ। ये बीच में अविवक्षित पर्याय जो बताई है, जो विवक्षित कौन सी है, तो हम चार प्रकृतियों की कर रहे हैं,
चार में से दो हो गया, एक हो गया तो अल्पतर हो गया,
अविवक्षित पर्याय के द्वारा उसका अंतर करके। अभी विवक्षित कौन सी है, चार प्रकृतियों की उदीर्णा कर रहा था, उपशम सम्यक दृष्टि है, अब उसने भय और जुगुप्सा का आगमन किया तो भुजगार हुआ, चार में से क्या हुआ,
छह हुआ।
हाँ, छह हुआ या एक का किया तो भी पांच हुआ।
हाँ।
तो क्या हुआ अभी,
भुजगार हुआ।
भुजगार हुआ फिर वो ऊपर के गुणस्थान में गया,
अल्पतर होता रहा,
भुजगार का अंतर चला।
हाँ, अभी भुजगार इसलिए अल्पतर नहीं,
अन्य पर्याय अविवक्षित पर्याय में दो में हुआ, एक में हुआ, उसकी सब अलग,
दो में से एक में जीरो हुआ और जीरो में से वापस,
फिर अवक्तव्य हुआ, ये सारे क्या है, अन्यतर,
अन्यतर है और पीछे भुजगार है। ये उत्कृष्ट अंतर देखना है,
यानी भुजगार का छोड़कर अन्य हुए पर्याय, बीच में अवस्थित हुआ, बीच में अन्यतर, अल्पतर हुआ, अवक्तव्य हुआ, ये अविवक्षित पर्याय, यानी अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य। ये अन्यतर में अविवक्षित में आ गया और बाद में फिर जो एक प्रकृति से दो प्रकृति हुआ तो उसका भुजगार हुआ, जीरो में से एक हुआ तो हमने उसको
अवक्तव्य
कहा, एक में से दो हुए तो हम कहेंगे उसको भुजगार।
तो यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं ना, छठे गुण स्थान में उसने उजागर किया, सातवें में गया, आठवें में गया, नौवें में गया, दसवें में गया, ग्यारह में
सब सब कुछ गया और नीचे फिर
नीचे आया,
नौवें में आया, उदीर्णा होने लगी तब की बात।
हाँ, तो यहाँ पे स्त्री वेद की उदीर्णा ली उसने, तो वो अंतर्भूत बढ़ा दिया।
स्त्री वेद की उदीर्णा इसलिए लेनी है,
अंतर्भूत बढ़ा,
क्योंकि हमें उजागर का उत्कृष्ट अंतर चाहिए था। पुरुष वेद की उदीर्णा जल्दी हो जाती है, यही रुकेंगे अभी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हो लो देना।